सब मिलकर इस वाणी का उच्चारण करेंगे।
करम की ममता घना चित रोग, करम की ममता घना चित रोग, जतन नहीं होवे वंजोग, बिना जतन नहीं होवे वंजोग,
बिना जतन नहीं होवे वंजोग, बिना जतन नहीं होवे वंजोग।
पलक नहीं धीरज पावे, एक पलक नहीं धीरज पावे,
एक पलक नहीं धीरज पावे, एक पलक नहीं धीरज पावे।
करम की ममता चकर फिरावे, करम की ममता चकर फिरावे,
करम की ममता चकर फिरावे, करम की ममता चकर फिरावे।
करम फल भोग की आशा धारी, करम फल भोग की आशा धारी, अनंक मनोरथ नित विचारी, अनंक मनोरथ नित विचारी,
अनंक मनोरथ नित विचारी, अनंक मनोरथ नित विचारी।
बारंबार मन को समझाई, बारंबार मन को समझाई,
बारंबार मन को समझाई, बारंबार मन को समझाई।
सत ठाकर के चरण समाई, सत ठाकर के चरण समाई,
सत ठाकर के चरण समाई, सत ठाकर के चरण समाई।
रुच रुच चरनी राखे प्रीत, रुच रुच चरनी राखे प्रीत,
रुच रुच चरनी राखे प्रीत, रुच रुच चरनी राखे प्रीत।
अंतर्गत गावे नित गीत, अंतर्गत गावे नित गीत,
अंतर्गत गावे नित गीत, अंतर्गत गावे नित गीत।
मोह ममता को त्याग जाग के प्रभु चरणी चित राख मंगत मिले तब शांति जब नाम अमीरस चाख मोह ममता को त्याग के प्रभु चरणी चित राख मंगत मिले तब शांति जब नाम अमीरस चाख
कर्म की ममता घना चित रोग बिना जतन नहीं होवे बंजो। हम सब जानते हैं कि सुबह जागने से लेकर रात्रि के सोने तक निरंतर हम कर्म करते रहते हैं या कर्म करने के बारे में सोचते रहते हैं और ये ऐसा घना रोग है जो चित्त को छोड़ता ही नहीं। चित्त वास्तव में कहते हैं चेतना। चेतना के द्वारा मैं जानता हूं, तो जो जानने वाला है ये कर्म की ममता का रोग उसको लगा हुआ है। जैसे गीता में कहा गया भूता नाम अस्मि चेतना, दसवें अध्याय में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सारे प्राणियों में चेतना मैं हूं। ईश्वर को कोई जड़ करके तो नहीं देखता, उसको चेतन करके देखता है। और क्या आशा करता है ईश्वर से कि ईश्वर सबके बारे में जानता है और सबके कर्म फल के अनुसार उसको अच्छे दिन बुरे दिन या सुख और दुख देता है। उसके दरबार में न्याय के अलावा दूसरी चीज है ही। ये मेरी धारणा ईश्वर के बारे में होती है, लोगों के बारे में मेरी धारणा ये नहीं होती, क्योंकि लोग मोहग्रस्त हैं, ईश्वर निर्मल है। तो क्या निर्मल है? यदि देह जैसे मेरी है तो मुझे पता है देह में बचपन से लेकर आज तक परिवर्तन हो रहे हैं और लगातार देह बन रही है, बिगड़ रही है, रोगी हो रही है, स्वस्थ हो रही है, सुख मिल रहे हैं, दुख मिल रहे हैं। और इन दो में से मैं एक की इच्छा करता हूं, वो संभव नहीं, क्योंकि संसार जब द्वंद रूप है, शरीर संसार जब एक चीज है, जिस मेटेरियल से शरीर बना है उसी मेटेरियल से संसार बना है, तो फिर इस द्वंद से मैं कैसे मुक्त हो सकता? तो कर्म की ममता चित घना चित रोग, तो कर्म की ममता क्या कि कर्म का फल जब मेरे मन अनुकूल हो जाएगा तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। इसी कहते हैं एक पलक नहीं धीरज पावे कर्म की ममता चकर फिराते। सुबह जागने से लेकर रात्रि तक मैं कर्म के चक्कर में घूमता रहता हूं और रात को थक थका के घर आता हूं विश्राम करने के लिए, सुखी होने के लिए, क्योंकि घर में ही सुख मिलता है। लेकिन हम सब जानते हैं घर में कितना सुख होता है। जिस प्रकार बाहर की जिम्मेदारियां उसी प्रकार घर की भी जिम्मेदारियां होती हैं। बाहर अलग समस्याएं हैं, घर में अलग समस्याएं हैं। तो चाहे आप बाहर रहिए चाहे आप घर में रहिए, लेकिन कर्म की ममता या कर्म का बंधन कह लीजिए वो मुझको नहीं छोड़ता। और ये रोग है कहां? रोग ये देह में नहीं है, कर्म का रोग देह में नहीं है, चित्त में है। घना चित्त रोग, चित्त कहते हैं जिसमें चेतना होती। जो गीता कह रही है कि भूता नाम अस्मि चेतना, सारे प्राणियों में सारे मनुष्यों में चेतना मैं हूं, तो मैं किसके बारे में चैतन्य हूं? किसके बारे में मैं जानता हूं। मेरे मन में यदि कोई भी इच्छा उठे तो मैं तुरंत उसको जान लेता हूं, जान लेता हूं। जब इच्छा उठी है तो इच्छा कमी को उजागर कर रही है ना, इच्छा किसी कमी को के कारण उठती है। जब कमी के कारण इच्छा उठेगी तो आप उस कमी के कारण बेचैन होगे, तो फिर उसकी प्लानिंग करोगे कि कैसे कर्म किया जाए कि ये इच्छा पूरी हो जाए। यही तो प्रक्रिया के दैनिक जीवन की, इसके इससे हटके तो कुछ भी नहीं। आप आइटम गिनना छोड़ दो, बेसिक चीज को समझने की कोशिश करो कि मनुष्य के अंदर जब कर्म की इच्छा होती है तो क्या शो करती है, कि मेरे अंदर कुछ कमी महसूस हो रही है और उस कमी के कारण मेरे अंदर बेचैनी हो रही है। यदि मैं उस कमी को कर्म के द्वारा पूर्ण कर लूं तो मैं चैन में आ जाऊंगा। तो वो चैन का दिन, चैन का वक्त कभी आ ही नहीं सकता। वो कहते रहे कि बिना यत्न नहीं होवे वंजो, बिना यत्न के इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। इच्छाएं मन में उठती रहेंगी, कमी मन में महसूस होती रहेगी और उसको कर्म के द्वारा, शरीर के द्वारा पूर्ण करने की कोशिश करोगे, लेकिन कह रहे हैं बिना यत्न नहीं होवे वंजो, इससे छुटकारा तुझको बिना यत्न के नहीं मिलेगा। अब आप बताइए, सुबह से लेकर रात्रि का यत्न तो करते रहते हो आप, मुसीबत से छुटकारे के लिए यत्न करते हो, तो प्रभु क्या कह रहे हैं? जिन्होंने ये संसार बनाया, जिन्होंने मेरी बुद्धि में चेतना दी, बुद्धि जानती है ना, वो कुछ दूसरी बात कहना चाह रहे हैं आपसे कि ऐसे तुझको छुटकारा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कहते कि एक पलक नहीं धीरज पावे, कर्म की ममता चकर फिरावे। एक पलक मात्र भी तू धैर्य से कभी जी ही नहीं सकता, क्योंकि कर्म करने की जो ममता है तेरे अंदर कि कर्म करके मैं इससे मुक्त हो जाऊंगा, इस बंधन से, वो तू इस विज्ञान को जानता ही नहीं। इसलिए कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी बुद्धिमान तुझे क्यों ना बना दिया जाए, चक्रवर्ती राजा भी तुझे क्यों ना बना दिया जाए, एक प्राइम मिनिस्टर तो अपने देश का होता है, चक्रवर्ती राजा पूरे विश्व का होता है, तब भी ना तेरा कभी कर्म खत्म होगा, ना कभी तेरी बेचैनी खत्म होगी। इसीलिए मैं जीवन में गुरु धारण करता हूं, शास्त्र का स्वाध्याय करने की कोशिश करता हूं और इस बंधन से कैसे मुक्त हूं वो मेथड सीखने की कोशिश करता हूं। तो वो कह रहे हैं कि कर्म फल भोग की आशा धारी, अनंत मनोरथ नित विचारी। तो संसारी तरीके से जब मैं कर्म करता हूं, उसको संसारी बुद्धि के द्वारा निर्णय करके जब कर्म करता हूं, तो कहते हैं कि क्या होता है, हर कर्म जो तू करता है उसके फल के भोग की आशा लेकर करता है। तो अब बताइए कि ये क्या होता है फिर, अनंत मनोरथ नित विचार। तो कर्म फल जो स्वार्थ तेरा कर्म है या संसारी सुख प्राप्ति के लिए कर्म है, वो क्या होता है, उसे धीरज नहीं मिलता, नए भोगों की आशा से उजागर हो जाती है। अनंत मनोरथ नित विचार, नए मनोरथ, नई कामनाएं तेरी बुद्धि के आगे खड़ी है। इसीलिए तेरा ये कर्म बंधन कभी खत्म नहीं होता। जिस देह से कर्म कर रहा है वो देह खत्म हो जाता। यदि मैंने सदविचार नहीं किया तो संसारी विचार करके कभी आप इस बेचैनी से मुक्त हो सकते हो। और हर मनुष्य जो संसार में आता है, जब उसकी बुद्धि परिपक्व होती है, तो यही सोचता है पुरुषार्थ ठीक करूंगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि अपने बारे में विज्ञान का पता नहीं मुझे, इसलिए सारा जन्म मैं बंधन बढ़ाने के लिए, बंधन गहरे करने के लिए जीता रहता हूं, समझता यह हूं कि मैं सफल जीवन व्यतीत कर रहा। इसीलिए वही बात आती है, आशा माही जन्म या आशा में मर जाए, मंगत घने कलेश में नित प्यासा रहा। तो सारी जिंदगी घना कलेश लेकर जीता रहा और एक जो तृप्ति की या सुख प्राप्ति की प्यास थी, संतोष की प्यास थी, वो मैं उसमें प्यासा ही रहा, संतोष मुझे कभी मिला ही। तो फिर यदि मैंने अपने विज्ञान को नहीं सीखा तो फिर मैं इस निर्णय पर पहुंचूंगा कैसे कि मनुष्य जन्म इस कामना को खत्म करने के लिए मिला था और मैं मनुष्य जन्म कामना को पूर्ण करने के लिए व्यतीत कर रहा हूं। जो कामना मेरे दुख का कारण है, मेरी बेचैनी का कारण है, मेरे पाप का कारण है, कुछ लोग तो अपना मेहनत से पैसा कमाते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो समाज भी जानता है, उस तरह से व्यवहार संसार में करते हैं, अर्थात बेईमानियां मकारियां नहीं करते हैं, अपनी मेहनत से कमाते हैं, जितनी सामर्थ्य है उतने भोग पूरे करने की कोशिश करते हैं और मानव जीवन व्यतीत करके चले जाते हैं। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जहां मेरा अधिकार नहीं है, अनधिकार चेष्टा करके दूसरे का पैसा मेरे पास कैसे आएगा, मैं वो प्लानिंग करता रहता हूं। ये भूल जाता हूं कि जैसे मैं सुखी होना चाहता हूं तो ये भी तो सुखी होना चाहता है, तो मैं इसके साथ बेईमानी कैसे कर सकता हूं। तो मैं अपने जीवन में अपने भोगों की इच्छा पूरी करने के लिए अनुचित तरीके अडॉप्ट कर लेता हूं, अनुचित तरीके अपना लेता हूं, और मैं अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए वो भोग किसी प्रकार से पूर्ण कर देता हूं। कि याद रखिए, मान लिया मैंने पैसा बड़ी ईमानदारी से कमाया, मेहनत से कमाया, और जो प्रभु ने उसको देना था वो दिया, उसमें मैंने अपना गुजारा किया। दूसरा व्यक्ति, उसने सही तरीके से पैसा नहीं कमाया, बेईमानी करके कमा लिया या अनुचित तरीके अपना के कमा लिया, पैसे ले लिए बढ़िया चीज के, चीज दे दी उसको घटिया, तो मैंने बेईमानी करके अनुचित तरीके अपना के मैंने पैसा कमा लिया और उससे अपने भोग पूरे कर लिए। लेकिन मुझको यह पता नहीं, यदि मैंने अनुचित तरीके अपना कर पैसा कमाया तो ये जो पाप के संस्कार हैं ये इतने गहरे हो जाते हैं, अर्थात तेरे अंदर मन के अंदर पैसे का लोभ इतना गहरा हो जाएगा कि तुझको आगे और बड़ी बेईमानी करने के लिए मजबूर करेगा, क्योंकि तृष्णा बढ़ेगी, आशा बढ़ेगी, कामना और गहरी हो जाएगी, तो तू ज्यादा बेचैन होगा या कम बेचैन होगा। इसलिए याद रखिए, मैंने यदि अपनी कोई भी वासना, कोई भी मन की इच्छा अनुचित तरीके से पूरी करी तो उसका संस्कार इतना गहरा बन जाता है कि तू उससे फिर आसानी से मुक्त नहीं हो पाएगा। इसलिए सत्पुरुष क्या कहते हैं कि सादगी का जीवन है। सादगी का मतलब क्या, कि तू कोशिश कर तेरी आवश्यकताएं पूरी हो, तू नकल कर करके अपनी वासनाएं फैला मत, क्योंकि वासना तेरी फैलेंगी तो जैसे अर्जुन पूछता है कृष्ण से, मनुष्य पाप करना नहीं चाहता फिर भी वो पाप कर जाता है, कौन उसको मजबूर करता है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं उसकी अपनी कामना ही उसको पाप करने के लिए मजबूर करती है। तो इसीलिए यदि मैंने कामना पूरी करनी ही है संसार में, कोई मेहनत पल रही है, तो मैं अनुचित तरीका ख्वाब में भी अपनाने की कोशिश ना करूं, क्योंकि भविष्य के लिए मैं अपने जीवन में, अपने मन के अंदर, अपनी बुद्धि के अंदर ऐसा जहर घोल लूंगा कि मेरा छुटकारा होना बहुत मुश्किल है। उसके लिए मुझे बड़ी गहरी कोशिश करनी पड़ी, गहरा तप करना पड़ेगा, और ये संस्कार यही तुझको परेशान नहीं करेंगे, अगले जन्म में भी ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि तेरी मन बुद्धि यही रहेगी, यही तरह समझ आएगी। तूने इसके अंदर यदि गलत तरीके से संसार के सुख भोगने की कोशिश करी, और उस गलती की सजा क्या होती है, तेरे अंदर ये संस्कार इतने गहरे हो जाते हैं मन के अंदर कि अगले जन्म में तेरे मन के द्वारा ही तेरा ब्रेन तैयार होना है। मनुष्य जन्म मिल भी गया तो तेरा ब्रेन ऐसा होगा कि वो पाप करने की वृत्ति वहां भी उसके अंदर उठेगी और तू पाप करेगा। तो इस जन्म में भी तू तेरी दुर्दशा हुई, अगले जन्म में भी तेरी दुर्दशा होगी, इसलिए मैं ये गलती क्यों करूं। तो इसीलिए ये अध्यात्म का बड़ा गहरा विज्ञान है। भूतानाम अस्मि चेतना गीता की कोई साधारण बात नहीं है। 10वें अध्याय, सारे प्राणियों में चेतना मैं हूं और मैं जानता हूं कि मैं ही जानता हूं, अर्थात मैं कौन, ये बुद्धि, इसका नाम बुद्धि रखा गया, जो जानती है मेरे मन में क्या छोट रही है, पैसे की इच्छा थी या और कोई कामना थी, तो मैं क्या करता हूं, कामना के वशीभूत होकर गलती करके भी, धोखा देके भी मैं अपनी इच्छा पूरी करना चाहता हूं। लेकिन बुद्धि यदि आपकी जागरूक है, सतमार्ग को समझती है, ईश्वर का विश्वास है, तो बुद्धि इस बात को भी जानती है कि गलत यदि किसी कर्म करके आप वासना पूरी करी तो मैं फिर इसका भागीदार हो जाऊंगा, ये पाप फल अर्थात जो दुख है वो भोगने के लिए। तो जो बुद्धि इतनी जागरूक है कि एक गलती की भी सजा माफ नहीं है, मुझको भोगनी ही पड़ेगी, तो आगे का दुख उसको अलर्ट कर देता है कि यहां गलती जानकर मैं क्यों करूं। अनजाने में किसी से हो जाए वो एक अलग बात होती है, जैसे बालक है अनजान है वो, लेकिन जानकर गलती करना इसका इतना गहरा संस्कार बनता है कि तेरा इस जन्म में भी पीछा नहीं छोड़ता, अगले जन्म में भी पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए मनुष्य जन्म लेकर जानकर गलती करना, जानते हुए ये गलत काम है मैं कर रहा हूं, इससे बड़ा पाप मनुष्य के लिए नहीं हो सकता। इसलिए होश में रहकर मनुष्य जन्म व्यतीत करना चाहिए। इसीलिए मनुष्य जन्म में कहा जाता है तू गुरु धारण कर। गुरु कौन? वो ईश्वर जो शरीर रूप में प्रकट हुआ, शरीर रूप में आकर उसने हमारा मार्गदर्शन किया, ये वाणी प्रकट की, शास्त्र प्रकट किए, किस लिए प्रकट किए? तो वाणी तो करिए सादा जीवन जिसका जिसका मन प्रसन्न, तू मन को तो प्रसन्न करना चाहता है, क्योंकि बचपन से लेकर तूने घर में भी तंग किया लोगों को, मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, तूने ये नहीं देखा कि दूसरों का भी तो अधिकार है, मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। तो अनुचित तरीके अपनाकर भी मैं अपनी इच्छा पूरी कर लेता हूं, माता पिता पर भी इतना प्रेशर बना लेता हूं कि वो मजबूर हो जाते हैं मेरी इच्छा पूरी करने। तो इसीलिए यदि अध्यात्म विद्या मैंने नहीं सीखी, अध्यात्म मार्ग पर चलने की यदि मैंने दिल से कोशिश नहीं करी, इसकी आवश्यकता ही बुद्धि ने नहीं समझी, तो ये बड़ी भयंकर भूल मेरी होगी, बड़ी भयंकर मिस्टेक मेरी होगी, जो ये जन्म भी बिगाड़ेगी, अगला जन्म भी बिगाड़ेगी, तो दो जहान तेरे डूब जाते हैं। इसलिए मनुष्य जन्म लापरवाही से व्यतीत करने की जरूरत नहीं। तो इसीलिए जो ये चेतना जिसकी बात गीता कर रही है, इसी को बुद्धि वृत्ति बोलते हैं, अर्थात बुद्धि में भी तो संकल्प होता है, मन के अंदर इच्छा होती है, आप कहते हो भाई नहीं ये गलत है, ये मैंने पूरी नहीं करनी, सही है तो धर्म अनुकूल मार्ग पर चलकर अपनी इच्छा पूरी कर ले तो यदि हो सकती है। तो बुद्धि का जो निर्णय है यही बुद्धि वृत्ति है। तो बुद्धि का निर्णय यदि आपकी संसारिक बुद्धि है, संसारी लोगों का संग कर रहे हो, पता नहीं आप कितनी गलतियां करोगे नकल कर कर, दुनिया में तो ऐसे ही चलता है। अरे प्रभु तेरा मालिक है, तेरे बुद्धि की चेतना वो स्वयं है, तू कैसे गलती कर सकता है? तो इसीलिए जिसके अंदर ईश्वर का होश होता है, अध्यात्म विद्या जो सिस्टमेटिक सीखता है, जानता है, वो दूसरों की नकल करके कभी गलत नहीं करता। उसकी बुद्धि में ये शक्ति आ जाती है कि सही निर्णय क्या है, गलत क्या है। इसीलिए चाहे सारी दुनिया उल्टे मार्ग पर चले, चाहे रावण की पूरी लंका रावण को फॉलो करे, लेकिन विभीषण जैसे लोग फिर भी होते हैं वो रावण को फॉलो नहीं करते, वो राम के चरणों में पहुंच जाते हैं। तो मैं जहां हूं, जिस हालत में हूं, मैं वो अंतर्यामी ईश्वर का अनुभव कर सकता हूं, वो मेरे संग है, तो मैंने उसको नहीं भूलना। संसारी वासना पूरी करने के लिए मैंने नहीं जीना, होश में मैंने जीना। इसलिए रास्ता क्या है, वो कहते हैं कि बारंबार मन को समझाई, सत ठाकर के चरण समाई। जो प्रभु पूर्ण शुद्ध है, आनंद रूप है, शांति रूप है, वो इस देह के अंदर मौजूद है, जैसे मेरी बुद्धि इस देह के अंदर मौजूद है नहीं, तो प्रभु उस बुद्धि के संग है। बुद्धि कभी भी प्रभु का संग नहीं छोड़ती, यदि छोड़ दे तो चेतना ही बुद्धि की खत्म हो जाएगी, तो शरीर तो जड़ हो जाएगा। तो जिस प्रभु के कारण मेरा जीवन चल रहा है, उस प्रभु को ही मैंने छोड़ रखा है। क्यों छोड़ रखा है? कि मैं अपने आप को देह करके समझता हूं, मैं अपने आप को बुद्धि करके, जीव करके नहीं समझता। सत्य बात यह है कि देह में चेतना नहीं है, चेतना बुद्धि है, बुद्धि जानती है, बुद्धि ही सुखी होती है, बुद्धि ही दुखी होती है, बुद्धि ही पाप करती है, बुद्धि ही पुण्य करती है, बुद्धि को ही शांति चाहिए। तो मैं बेचैन हो रहा हूं, लेकिन मैं का आरोपण मैंने किस पे कर दिया? देह पे कर दिया। मैं अर्थात देह, मेरा नाम ये, मेरा रूप ये, तो विचार करो जरा, किसी डॉक्टर से पूछ लो, इस शरीर के अंदर कोई ऐसा एक सेल भी है क्या, कोई ऐसा एक ऑर्गन है क्या जिसमें चेतना हो? दुनिया के सारे सारे डॉक्टर 100% फेल हो जाएंगे, कोई ऐसा वो इंस्ट्रूमेंट उस पर टच नहीं कर सकती कि ये है चेतना का स्रोत। पूरे शरीर में एक सेल की बायोलॉजी भी सब डॉक्टर सीखते हैं, और फिजिक्स की बात करो तो एक एटम के अंदर की भी खोज वो कर रखी है उन्होंने, कितना बड़ा संसार एटम के अंदर है। चेतना का है, और मैं जानता हूं कि मेरे अंदर चेतना है, कि जानने वाले को ही चेतन बोलते हैं। आपका जानना बंद हो जाए तो आपके लोग तो फूंक देंगे, क्योंकि जानता है कुछ नहीं है तो मर गया, जबकि सारे ऑर्गन आपके ठीक ठाक हैं, लेकिन आप मर गए। क्या मर गया? केवल मेरी बुद्धि से चेतना गायब हो गई। तो इसीलिए कहते हैं कि भूतानाम अस्मि चेतना, सारे प्राणियों की चेतना मैं हूं, और जो चेतना का स्रोत है, चेतना का सागर है, उसको मैंने छोड़ रखा है। इसीलिए कि इन जड़ मनुष्यों के बीच में पल रहा हूं, जो देह को ही सब कुछ समझ रहे हैं और अपने चेतन स्वरूप को कुछ भी नहीं समझ रहे। इसीलिए वो कह रहे हैं कि लुच लुच चरणी राखे प्रीत अंतर्गत गावे नित की। तो प्रभु के चरण क्या है? प्रभु का नाम ही आपके लिए प्रभु के चरण है, प्रभु का मंत्र ही आपके लिए प्रभु के चरण है, जो आज की स्थिति में है। तो वो अंतर्यामी प्रभु जब मंत्र रूप में अवतार लेते हैं, जब मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं, तो मेरा मार्गदर्शन करते हैं। उस मार्गदर्शन को यदि मैं अडॉप्ट कर लूं, धारण कर लूं जीवन में, तो मेरी सदगति हो जाएगी, दुर्गति नहीं होगी। उसी प्रकार वो मंत्र रूप में भी अवतार लेते हैं। मंत्र भी चेतन ही होता है, याद रखें, मंत्र जड़ लैंग्वेज नहीं है। ये तो महर्षि रमण क्यों कहते हैं कि मंत्र गुरु आत्मा एक चीज, क्यों कहते हैं भैया? याद रखिए, जो शब्दावली शास्त्रों में प्रयोग होती है वो साधारण शब्दावली नहीं होती, मंत्र चेतन है। हम कहेंगे भी गुरु तो चेतन नजर आ रहा है, नाद की बात करते हैं, नाद में कहां से चेतन आ गया? कुंडलनी की बात करते हैं, कुंडलनी में चेतन कहां से आ गया? लेकिन महर्षि रमण क्या करें, कुंडलनी आत्मा मंत्र गुरु चारों एक ही चीज है, इसमें से किसी भी एक को अपना लो, आत्मा व्यक्त हो जाएगी, अर्थात आपको अपने स्वरूप का दर्शन मिल जाएगा, स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो आज मैं जहां खड़ा हुआ हूं, प्रभु ने मेरे लिए जो व्यवस्था की है, मैंने वहीं तो अपना ध्यान लगाना है, वहीं तो पुरुषार्थ करना है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि रुच रुच चरणी राखे प्रीत अंतर्गत गावे नित गीत। तो अंतर्गति मैंने उस नाम का स्मरण करना है, मंत्र का स्मरण करना है, और यदि मैं ने गुरु की बात मानी और आगे बढ़ गया, उसे पुरुषार्थ किया, तब मेरी फाइनल गति क्या होगी? कहते हैं कि मोह ममता को त्याग के प्रभ चरणी चित राख, मंगत मिले तब शांति जब नाम अमीरस चाख। मोह ममता को त्याग, मोह क्या है? मैं देह हूं और मैं देह बनकर जो कुछ भी कर रहा हूं ये मेरा मोह है, और इस देह करके जो मेरा है, मकान मेरा है, पत्नी मेरी है, सामान मेरा है, पैसा मेरा है, तो जो मेरा है ये सारी तरी ममता है, मैं और मेरा, इसी को मोह ममता कहते हैं। कहते हैं मोह ममता को त्याग के प्रभु चरणी चित राख। तो ये मोह ममता का त्याग कौन कर सकता है? ये बुद्धि ही मोह ममता का त्याग कर सकती है। तो जिसके अंदर सत विचार है, बुद्धि के अंदर सत निर्णय है, जैसे कि अभी आप सत्संग में बड़ा बारीक विश्लेषण सुन रहे थे कि देह करके संसार, देह संसार एक ही चीज है। जिस समय देह खत्म हो जाती है, तेरा जागृत संसार खत्म हो जाता है। लेकिन ये विज्ञान बड़ा गहरा है, अभी ऐसा लगता है हमारे बुद्धि से ऊपर की बात है, कोई बात नहीं, लेकिन जो इस संसार में जी रहे हो, इससे कुछ नियम कायदे कानून तो है, उसके बारे में गुरु क्या कह रहा है, उसके बारे में शास्त्र क्या कह रहे हैं, मैं वो तो सीख सकता हूं, तो मुझको उसके अनुसार चलना चाहिए। तो संसार में ईमानदारी का जीवन व्यतीत करूं, ये ना सोचे कि अब तो वक्त बदल गया, बिना बेईमान के यहां गुजारा ही नहीं हो सकता। याद रखिए, प्रभु ने इस संसार को नहीं छोड़ा, प्रभु ने तेरी देह को नहीं छोड़ा, तेरा रास्ता यदि सतमार्ग का है तो प्रभु का की आज्ञा का तो उल्लंघन नहीं करेगा। तूने यदि संसार को ही गुरु बना लिया फिर तो कभी भी कर लेगा, कोई भी गलती कर लेगा। तो जब तेरे अंदर प्रभु विश्वास होगा और प्रभु को अपना अपना मालिक समझेगा, याद रखिए मालिक समझने का मतलब है वो मुझको हर वक्त देख रहा है, ये भाव मेरी बुद्धि से हटता नहीं कभी। संसार तो एक बार देखना बंद कर देगा लेकिन प्रभु की आंख नहीं लगती, वो सोते नहीं, वो निरंतर मेरी कला को, मेरी सोच को, मेरे कर्म को देखते रहते। इसलिए जिसको प्रभु का होश बना रहता है, होश उसी का बना रहेगा जो प्रभु की याद करने के लिए वक्त निकालेगा और उसको अपना जीवन का लक्ष्य बनाकर उस मार्ग पर चलने की कोशिश करेगा, उसी को प्रभु का होश रहता है। इसलिए महाराज कहते हैं प्रेमी स्मरण से लापरवाही करनी अपनी मूल बर्बादी करनी। मनुष्य जन्म लेकर जिसने प्रभु के स्मरण की जरूरत नहीं समझी, केवल मैं कहीं माथा टेक लेता हूं, सिर झुका लेता हूं, हो गया मेरा काम, तो फिर ये मूर्खता की बातें करके मैं कहां पहुंचूंगा। याद रखिए कि मोह ममता को त्याग के प्रभु चरणी चित्त रख, प्रभु के चरण में अपने चित्त को रख। चित्त का मतलब ही है चेतना को, अर्थात बुद्धि को प्रभु के चरणों में रख। उसके लिए तो अपने आप को कन्विंस कर कि उसके बिना तेरा गुजारा नहीं है, तो सारा जीवन तेरा पाप का जीवन बन जाएगा, तुझको पता ही नहीं लगेगा कि कैसे पाप का जीवन बन गया। तो आगे के लिए तू अपना दुखों का सागर खुद ही तैयार कर रहा है, तुझको होश ही नहीं है कि ठीक क्या है और गलत क्या है। तो अंत में कहते हैं कि मंगत मिले तब शांति जब नाम अमीरस जा। ये अमीरस नाम क्या होता है, इसी को ही शब्द ग्रहण कहते हैं। तो अंत में तेरी वो स्थिति हो जाती है बुद्धि की कि तू ईश्वर के साथ एक हो जाता है, वहां जाकर बुद्धि परम शांति को प्राप्त करती है, तो उसी को अमीरस कहते हैं। मंगत मिले तब शांति जब नाम अमीरस चा, ये वो शांति है जो संसार तेरी देह को खत्म करके भी तेरी शांति तुझसे नहीं छीन सकती, वो तेरी निज शांति है, तेरे निज रूप में शांति है। इसलिए वो मेरा मेरी मंजिल है, मेरा अंतिम गोल है, जिसको प्राप्त करके ना मेरा पुनर्जन्म होता है, ना मैं किसी बंधन में फंसता हूं, परम शांत होकर संसार से विदा होता हूं। ओ ब्रह्म सत्य सर्व।